अच्छा, एक सवाल है कि आपने फरमाया कि बाज़ लोगों को जन्नत के लिए पैदा किया और बाज़ लोगों को दोज़ख़ के लिए पैदा किया, इसकी वजाहत फरमा दें। ये तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को जन्नत के लिए पैदा किया है और कुछ लोगों को दोज़ख़ के लिए पैदा किया है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर कुछ लोग जन्नत के लिए हैं और कुछ लोग दोज़ख़ के लिए हैं तो फिर हमारे अमल करने का भी कोई फ़ायदा है? हम अमल भी करें, नेक अमाल फिर हम क्यों करें? अमाल करने का कोई फ़ायदा है? हम जन्नती हैं तो जन्नती में जाएंगे, दोज़खी हैं तो दोज़खी में जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तकदीर का मसला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अमल करते रहो, अमल करते रहो। अल्लाह ताला हर शख्स के लिए वो आमाल आसान कर देते हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है। कुल्लुल मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू। जिसका हासिल यह है कि तकदीर पर हमें ईमान लाना है और हमें अमल की कोशिश, अमाल की और जन्नत में पहुंचाने वाले जो अमाल हैं उनकी कोशिश करते रहना है। दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये तो सिखा दिया कि कुछ लोग जन्नत के लिए पैदा किए गए, वो जन्नत ही में जाएंगे। अब हमें नहीं पता, तो तकदीर तो सिर्फ ईमान लाने के लिए है। करने के लिए क्या है? कोशिश करते रहो, जन्नत में जाने की कोशिश करते रहो, जन्नत वाले अमाल करते रहो, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते रहो। हम इस कोशिश के मुकल्लफ़ हैं, वही करते रहेंगे। फिर अगर हमें किसी नेकी की तौफीक नहीं होती तो अल्लाह ताला से मांगेंगे, या अल्लाह, या अल्लाह तू ही देने वाला है, तौफीक देने वाली ज़ात तेरी है, तू कादिर है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी तरीके से शरीयत के जो अमल हमसे नहीं हो रहा वो भी कर लें, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अल्लाह ताला के अहकामात पूरे करें, दुनिया में जितनी ज़िंदगी है शरीयत के मुताबिक गुजारें ताकि आखिरत में हम जन्नत के मुस्तहिक हो सकें। असल चीज़ तो अल्लाह ताला की रज़ा है और अल्लाह ताला की रज़ा होगी तो जन्नत हासिल होगी। तो ये बात अपनी जगह सही है, तकदीर का मसला अपनी जगह है, लेकिन हम तकदीर पर सिर्फ ईमान लाने के मुकल्लफ़ हैं। अमल के लिए हमें वही सिखाया गया, कोशिश करते रहो। और अल्लाह ताला जिस नतीजा, जो इंसान का नतीजा है जिसके लिए पैदा किया जन्नत या दोज़ख़, उसी के मुताबिक अल्लाह ताला दुनिया में अमूमन इंसान को तौफीक भी देते हैं कि इंसान उस काम में लगता है। क़ुरान में भी इसका जिक्र है, फ़अम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिलहुस्ना फसनयस्सिरुहु लिलयुस्रा। वहाँ पर भी तफसीर में इसकी वजाहत आती है। एक और सवाल, किसी का सवाल है, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मेरी पूरी फैमिली कैनेडियन सिटीज़न, मेरे खाविंद बेरोज़गार हैं काफ़ी अरसे से, माली परेशानी में हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं 2-3 महीने के लिए कनाडा जाकर चाइल्ड टैक्स बेनिफिट अप्लाई करूं और फिर वापस पाकिस्तान चली जाऊं और वहीं रहूं, तो क्या ये चाइल्ड टैक्स वसूल करना मेरे लिए जायज़ होगा? वसूल करना जायज़ होगा नहीं होगा एक अलग चीज़ है, झूठ बोलना ये मसला अलग होगा। बस इतना है कि इंसान, ज़ाहिर है कि हमें झूठ से बचने की ज़रूरत है, तो इंसान कोशिश ये करे कि झूठ ना बोलना पड़े किसी जगह पर। बाकी ये कि हाँ, माली परेशानी, अल्लाह ताला वो परेशानियाँ दूर करे। पाकिस्तान के हालात वैसे ही मुश्किल है, वहाँ हर जगह कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो ज़ाहिर है हालात भी मुश्किल हैं। पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन हैं, अल्लाह ताला वहाँ वालों के लिए भी आसानी फरमाए। बाकी दो चीज़ें अलग होती हैं, एक होता है क़ानूनी लिहाज से एक इंसान सही कर रहा है गलत कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहरहाल सही गलत होना, वो क़ानून को जानना, वो अपनी जगह है। लेकिन झूठ बोलना जो है उससे इंसान किसी तरीके से बच सकता हो तो बच जाए, झूठ से तो बचना होगा। एक और सवाल है कि दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, क्या ये सही है? हदीस में आता है حدیث میں آتا ہے لا يرد الدعاء الا القدر، لا يرد القدر الا الدعاء، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. جس کا مقصد یہ ہے، حدیث کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، جو حدیث بیان فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے، بہت طاقت رکھی ہے، اتنی زیادہ کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی تو دعا بدل دیتی. یہ دعا کی طاقت سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی تو دعا بدل سکتی، ایک معنی. دوسرے معنی اس حدیث کے، کہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی تقدیریں رکھی ہیں. ایک وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بس یہی ہونے والا ہے، جس کو اصطلاح میں تقدیر مبرم کہا جاتا ہے. اور ایک وہ تقدیر ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہوا ہے کہ دیکھو اگر یہ فلانا بندہ ہے اس کے لیے یہ لکھ دو، لیکن اگر وہ دعا مانگ لے تو پھر یہ دے دینا. یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے، دعا اس تقدیر کو بدل دیتی ہے. وہ والی تقدیر، اللہ تعالیٰ کو جو پتہ ہے کہ یہ ہونے والا ہے، وہ تقدیر، وہ تو ظاہر اللہ کو پتہ ہے، وہ تو نہیں بدل سکتا. لیکن فرشتوں کو کہا گیا تھا کہ اچھا اس کو یہ چیز دینا، لیکن اگر دعا مانگ لے تو اچھا اس کو یہ والی چیز دے دینا، اس کو بیماری میں مبتلا کرنا، لیکن اگر وہ دعا مانگ لے تو پھر یہ شفا دے دینا. یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے. اس تقدیر میں دعا کے ذریعے سے ظاہراً بھی فرق آتا ہے، اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح معلق ہی کیا تھا کہ اگر یہ دعا مانگے تو اس کو یہ دے دینا، نہ مانگے تو یہ نہ دینا. تو یہ بات صحیح ہے، حدیث میں آتی ہے، لیکن اس کے دو معنی ہیں، وہ دونوں معنی بھی واضح ہونے چاہیے. کسی سے کوئی غلطی بار بار ہوتی ہے اور کوئی خاص پچھتاوا بھی ان میں نظر نہیں آتا، اور ہمیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن مشکل لگتا ہے. ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ کوئی غلط کام کیا اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کو کوئی اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، پھر دوبارہ کیا، پھر کیا. بہرحال اگر اس کا تعلق ان کی ذاتی معاملہ ہے، ان کے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے، وہ جانے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، توبہ کی توفیق دے دے. جب ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کسی بندے کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچانے کا، نقصان کا معاملہ ہے، تو پھر ہم اس کو کوشش کریں کہ وہ معاملہ کسی طریقے سے حل ہو اور کسی کو ان کے ذریعے سے نقصان نہ پہنچے. اگر وہ کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے ان کا اور اللہ کا معاملہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد رہنے دیں. ٹھیک ہے، اس نے گناہ کیا، اپنے خالق، یہ خالق، یہ مخلوق، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک سے زائد کان چدوانا کا جو مسئلہ ہے، اس میں اصولی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو چیز عورتوں میں، فقہا نے اس بارے میں جو اصول لکھا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کان چدوانے کا اور کان میں بالیاں پہننے کا ذکر تو ملتا ہے. ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقے کی ترغیب دی، تو حدیث میں آتا ہے کہ اپنے وہ ہار تھے وہ اتار اتار کے، اور کانوں میں بالیاں تھیں وہ اتار اتار کے وہ دے رہی تھیں. تو یہ پہننا تو ثابت ہے صحابیات سے، تو ثبوت بھی مل گیا. لیکن ایک سے زائد پہننے کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر اس میں کوئی ایسی کوئی صورت ہے کہ جس میں غیر مسلموں کے ساتھ یا ان کے کسی خاص طریقے کے ساتھ اگر کوئی مشابہت پائی جاتی ہے تو ہم منع کریں گے، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. अच्छा, एक और चीज़ रह गई गालिबन नीचे। सवाल ये है, एक सवाल रह गया दरमियान में, और उसके बाद फिर आगे वाले सवाल पे मैं जाता हूँ। तैरना, ये लिखा हुआ, क्या तैरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद अहादीस में हाँ तैरने का जिक्र मिलता है, और बाज़ रिवायतों में उसके तैरने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तैरने की तरगीब भी मनकूल है। बाज़ रिवायतों में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहादीस का दर्जा वो पूरी तहकीक भी मेरे सामने नहीं है, लेकिन बहरहाल बाज़ रिवायतों में सीरत की किताबों में तो जिक्र मिलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तैरना भी मनकूल है एक मौके पर, और बल्कि ये भी फरमाया है कि देखो अपनी औलाद को भी तैरना सिखाओ। फ़ायदेमंद चीज़ है, मुफीद है, और कभी ज़रूरत के मौके पर इंसान को ये चीज़ काम भी आ सकती है, और इसकी तरगीब भी आई है किसी दर्जे में, अहादीस में इसकी तरगीब आई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ रिवायतों में इसका सबूत, इसका तذکرہ भी मिलता है। अच्छा, अगर कोई एक और सवाल है कि अगर कोई शख्स गलत काम करता है और उसके साथ हम अच्छा मामला रखते हैं, अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी वजह से होता यह है कि जब ये एक अहम चीज़ है कि जब कोई शख्स गलत काम करे तो गलत काम करने के बाद ये ज़रूरी है कि वो तौबा करे, और तौबा के ज़रिए और तौबा के आसार उस पर नज़र आए, यानी वाकई कि वो ये भी कहे कि हाँ ठीक है, अब आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा। हर एक के सामने कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कम से कम जो ज़िम्मेदार हैं, जो बड़े हैं, तो यह हो कि अच्छा ठीक है, अब ये गलती हुई है, आइंदा ये काम नहीं करेगा, आइंदा के लिए वो अब ये तौबा कर रहा है और आइंदा ये काम नहीं करेगा, तो फिर अब उसके साथ जैसे ताल्लुकात है वो ताल्लुकात बाकी रखे जाए। लेकिन अगर एक शख्स तौबा करने के लिए ही तैयार नहीं है तो फिर तो जाहिर है, अगर हम एक शख्स गलत काम कर रहा है और उस काम में मुब्तला है और वो उससे तौबा करने के लिए निकलने के लिए भी तैयार नहीं, उसका अंदाज ही वो है, उसका मिजाज ही वो है, और फिर हम उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखें, हमारे अच्छे ताल्लुक़ की वजह से ख़ानदान के दूसरे लोग उनसे ताल्लुक़ रखें, हो सकता है कि दूसरे लोगों पर उसका बुरा असर पड़े, हाँ यहाँ पर एहतियात की जाएगी। ये जो पहली बात जो मैंने बताई थी कि किसी के बारे में अच्छा गुमान रखने वगैरह का जो बात है, वो ये कि अच्छा ठीक है, उसका और अल्लाह ताला का मामला, किसी को उससे नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन हमारे उसके साथ ताल्लुक़ रखने की वजह से दूसरों को नुकसान हो रहा है, दूसरे भी उससे ताल्लुक़ रख रहे हैं और माहौल ख़राब होने का अंदेशा है, तो नहीं, पहले तो उसको समझाया जाएगा, उसके जो बड़े होंगे उसको समझाएं, वो तौबा करें, और अच्छी तरह वो वाकई उस निकलने के लिए तैयार है तो फिर उसके साथ, अब जब तौबा कर ली और इकरार कर लिया और तौबा कर ली, फिर ख़त्म, अब उसको भुला दो, अब उसको बार बार कहीं इसने ये किया था, इसने ये किया, बस भुला दो, अब उसने तौबा कर ली और आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा कर चुका है, उसकी वजह से किसी और को अब नुकसान नहीं हो रहा, तो अब ठीक है, अब भूल जाओ उसको। हाँ ज़ाहिर है, अब ये कि उसूल तो सबके लिए एक ही होगा कि कौन गुनाह करता है और कौन नहीं करता, उसूल तो सबके लिए एक ही होगा, बस इतना है कि यहाँ का जो मुआशरा है, जो मैं बताना चाह रहा था, वो ये है कि अच्छा है, जब किसी ने जुर्म कर लिया तो फिर वो जैसा भी हो, अब उसके जुर्म को भूलना नहीं है, अब उसके जुर्म को भूलना नहीं है, हमेशा के लिए उसको गिरा दो, ऐसा गिरा दो कि वो किसी काम का ना रहे, उसकी ऐसी तोहीन कर दो। और इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम ये कहता है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, या रसूल अल्लाह मुझसे ज़िना हो गया। क्यों आई थी? यही ना कि दिल में जज्बा था, गलती हुई थी, तौबा करके आई थी, या रसूल अल्लाह मुझसे ज़िना हो गया, अब उस पर हद कायम कर दीजिए, अपनी जान पेश करने के लिए तैयार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये पक्की तौबा करके आई हैं, आपने फरमाया कि अच्छा अभी तो जाओ, अभी तो पेट में हमल है ना, बच्चा है, अभी चले जाओ। उनसे इंतज़ार करवाया, वो बेचारी बार बार आती थी और उनसे इंतज़ार करवाया, बच्चा हो गया, फिर वो आई, या रसूल अल्लाह अब तो बच्चा हो गया, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ہے, بچے کو دودھ کی ضرورت ہے, ابھی تو تمہارا دودھ پیے گا, اس کو دودھ پلاؤ, جب تک وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا تب تک نہیں آنا. پھر جب وہ دودھ چھڑا دیا اس کے بعد پھر وہ آئیں, یا رسول اللہ دیکھیے اس کے ہاتھ میں اب روٹی کا ٹکڑا ہے, ماں ہے, کیسے اس نے جان پیش کی ہوگی بچے کے سامنے کہ یا رسول اللہ یہ بچہ ہے, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, دیکھ لیجئے کھا بھی سکتا ہے, اب مجھ پر حد قائم کر دیجئے. یہ جب توبہ اور پکی توبہ اور اپنے جرم کا اقرار یہ سب چیزیں پائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا, بلکہ ان کے رشتہ داروں ذمہ داروں سے بھی کہا, جو رشتہ دار تھے جہاں رہتی تھی ان سے بھی کہا کہ دیکھو احسن الیہا, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, کوئی برائی کا معاملہ نہ کرنا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں, اس میں بڑے اور غریب اور فقیر کا مسئلہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ایک شخص پر نیکی کے آثار ظاہر ہو گئے اور پرانی چیز پرانی ہو گئی تو پھر اس کو بھلا دو. ناک چدوانا کیسا ہے؟ جائز ہے, عورتوں میں عام رائج ہے. تو جو چیز عورتوں میں رائج ہو اور غیروں کا طریقہ نہ ہو اور شریعت میں اس کی کوئی ممانعت ثابت نہ ہو تو جائز ہوتا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحابہ کے دور میں اس کا تذکرہ تو نہیں ملتا لیکن ہے جائز. رات کو انشاءاللہ 8:30 بجے پھر جمع ہوں گے درود شریف دعا کے لیے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.